राधा माधव कुंज बिहारि, जय राधा माधव कुंज बिहारि, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरि, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरि, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन चारी, यमुना तीर बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमतिष्ठवाहिनी गृह अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रभुराचार्य शिवदी होलवर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तिवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्तिवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग। चूँकि आज सीता देवी का आदर भाव है तो उनके विषय में पहले मैं पढ़ूंगा श्री श्रील महानवी स्वामी महाराज की पुस्तक समाधियां वृंदावन में। सीता ठाकुरानी शांतिपुर में रहती थी जो कि श्री अद्वैत आचार्य की नित्य भार्या हैं। तो आप जानते हैं कि अद्वैत आचार्य वास्तव में कौन है, महाविष्णु है। तो सीता ठाकुरानी क्या है, उनकी भार्या महालक्ष्मी। तो सीता ठाकुरानी महालक्ष्मी का अवतार है, नित्य भार्या जो महाविष्णु की पत्नी है। ये हमेशा वात्सल्य प्रेम में डूबी रहती थी, गौर सुंदर के प्रति सदा वात्सल्य भाव में रहती। जैसे ही श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ तुरंत ही सीता ठाकुरानी मायापुर में आई और एक टोकरी भर करके लाई जिसमें वस्त्र थे, आभूषण थे और बच्चों के सिल्क के कपड़े थे और जो है नेकलेस हार, रत्नों के हार थे और सोने के अंदर बंद बघनखा बच्चों के लिए विशेष रूप से होता है, बाघ का नाखून सोने के अंदर बंद करके बच्चे को पहनाया जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना वात्सल्य भाव था कि सब चीजें भर करके लाई तुरंत ही। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ मतलब सब चीजें तैयार करके रखी थी और चैतन्य महाप्रभु जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जन्म हुआ तो पूरी टोकरी भर करके लाई और इस स्वर्ण बालक की पूजा करने के लिए ये मांगलिक वस्तुएं लाएंगे, जैसे कि ताजी दूर्वा, हल्दी, कुमकुम और चंदन, इस बालक की पूजा के लिए लाएंगे। और अद्भुत नाम जो निमाई जो दिया है वो इन्होंने ही दिया चैतन्य महाप्रभु को, सीता ठाकुरानी ने। तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु निमाई नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनके पहले जितने भी विश्वरूप के अलावा, इनके पहले विश्वरूप थे, विश्वरूप के पहले शायद 8 कन्याएं थी, 8 कन्याएं दिवंगत हो गई है ना। तो जो बालक को मारने वाले ग्रह होते हैं या और भी जो भूत प्रेत होते हैं, तो उनके लिए ये बालक कलवा हो, नीम की तरह, इसलिए इस बालक का नाम रखा निमाई। नीम के पेड़ के नीचे भी पैदा हुए इस कारण से भी, और सीता ठाकुरानी ने विचार किया कि ये बालक नीम की तरह कड़वा हो। नीम का बड़े विशेष रूप से रक्षा करता है जो भूत प्रेत आदि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो बालकों को विशेष रूप से अनिष्टकारक होती हैं, तो नीम का पेड़ विशेष रूप से रक्षा करने वाला होता है। तो नीम के नाम से ही चैतन्य महाप्रभु को नाम मिला निमाई। कृष्ण लीला में सीता ठाकुरानी योग माया है अथवा पूर्णमासी है। श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में इन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी थी नंद और यशोदा को, कैसे बच्चे की देखभाल की जाए। उसी प्रकार से गौर लीला में सीता देवी हमेशा सची माता की सहायता करती थी कि बालक निमाई का कैसे पोषण किया जाए। सीता देवी और सची माता एक ही मन की थी, एक मन वाली, उनका जीवन और आत्मा भी केवल निमाई ही थे। क्योंकि सीता देवी का जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम था, तो सची माता अक्सर उनको ही चुनती थी सबसे पहले निमाई पंडित की पूजा करने के लिए। जब भी कोई मांगलिक अवसर आता था तो निमाई की पूजा करने के लिए, आप समझ रहे हैं, बच्चे की पूजा करते हैं मतलब नजर उतारते हैं कोई अशुभ ना हो, अनिष्ट ना हो, इस कारण से बच्चे की पूजा के लिए सीता देवी को ही बुलाती थी सची माता। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु अक्सर शांतिपुर आया करते थे अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए और सीता ठाकुरानी से मिलने के लिए, और वे जितने भी पड़ोसी हैं उनको इकट्ठा करते और बहुत ही तुमुल कृष्ण नाम लीला कीर्तन का उत्सव मनाते थे। और ये रात में बहुत देर तक चलता रहता था कीर्तन। जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी चले गए तो अद्वैत प्रभु और सीता देवी अक्सर उनसे मिलने के लिए आते रहते थे, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, यानी प्रतिवर्ष सीता महारानी, सीता ठाकुरानी अपने पति अद्वैत आचार्य के साथ आती थी शांतिपुर से, कहाँ, जगन्नाथपुरी। सीता ठाकुरानी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही विशेष जो प्रिय भोजन था वो बनाया करती थी। अक्सर भगवान के लिए जो लंच यानी दोपहर का भोजन है वो बनाती थी। सीता देवी चैतन्य महाप्रभु को अपने पुत्र जैसा प्रेम करती थी और ये इनसे प्रेम करते थे अपनी माता के समान। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध पहला अध्याय 3 समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण, श्लोक संख्या 14। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवम पार्थिवम वपुः दुग्धे माम औषधीर विप्रा तेनायम सा औषधतमः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवम पार्थिवम वपुः दुग्धे माम औषधीर विप्रा तेनायम सा उषत्तमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् ओषधि विप्रा तेनायम सा उषत्तमः। बोलिए धन्यवाद। बोलिए हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। अब यहीं पर हम चर्चा करेंगे। ये नवा अवतार है भगवान का। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 30 अध्याय में भगवान के 22 अवतारों की सूची है और गिनाए गए हैं। हर श्लोक में गिनाया गया कि ये कौन सा ये कौन सा। तो आज के श्लोक में गिनाया जा रहा है नवा अवतार पृथु महाराज का है। उसने बताया है ऋषि याच तो भेजे, ऋषियों ने चूंकि याचना की। याचना का मतलब क्या है? मांगा, है ना, प्रार्थना की, है ना। तो ऋषियों ने प्रार्थना की, तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ऋषियों ने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। इस पृथ्वी में बहुत अशांति हो गई थी उनके पापी पिता के कुशासन। कुशासन मतलब बुरा शासन, बहुत ही बुरा शासन था उनका पिता। पिता आप जानते कौन है? बेन। कहीं पर कहा जाता है कि बेन के समान कोई पापी नहीं हुआ, बेन के समान कोई पापी नहीं हुआ राजा। तो ये जो बेन थे, इनके पिता थे अंग, और वे राजर्षि थे। ध्रुव महाराज के वंश में अभी तक जितने राजा हुए सब राजर्षि हुए। बेन अंग का जो पुत्र है बेन हुआ, ये बहुत ही पापी निकला। तो बचपन से ही जो है ना इतना ये दुष्ट था ये बालक, कि खेलते खेलते ही अगर थोड़ी सी बात में कुछ झगड़ा हो जाए तो मार डालता था अपने साथी बच्चों को, मार डालता, जान से मार डालता था। जैसे कसाई जो ना पशु की हत्या कर दे, उसी प्रकार से मार डालता था। तो बड़ी शिकायतें आई पड़ोसियों की राजा के पास, और राजा ने इसको सुधारने का बहुत प्रयास किया। साम दाम दंड भेद, साम मतलब समझा करके भी, और दाम का मतलब प्रलोभन दे करके भी, और दंड दे करके भी, हर प्रकार से उसको सुधारने का प्रयास किया। लेकिन जब नहीं सुधरा और उनका कोई और कोई पुत्र था ही नहीं राजा अंग का, तो बड़े दुखी होकर के वो क्या करते हैं, राजमहल को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और उनका किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, बहुत खोजा कुछ पता नहीं चला। तो फिर बेन को तो राजा नहीं बनाना चाहिए था। जो ऋषि लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, तो जानते थे कि बेन तो बहुत ही दुष्ट है, इसको राजा नहीं बनाया जाए। तो फिर बिना राजा के ही किसी प्रकार अगर काम चलता है तो काम चलाया जाए। तो इस प्रकार की कोशिश चलती रही काफी समय तक। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, राजा के बिना बड़ी अराजकता फैल गई। अराजकता मतलब जो चोर लुटेरे हैं वो जो है घरों में जाकर के लोगों का धन सामान लूटने लगे, क्योंकि राजा नहीं था। तो फिर ऋषि मुनियों ने विचार किया कि ये तो बहुत ही प्रजा के ऊपर संकट आ गया राजा के बिना। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने इसको, किसको, बेन को राजा बना दिया। ना चाहते हुए भी बेन को राजा बना दिया कि कम से कम चोर लुटेरों से तो रक्षा होगी प्रजा की। और सही बात थी, राजा बेन के शासन में मतलब इतना कड़ा शासन था, दंड था, कि कोई चोरी करे तो जान से ही वो मरवा डालता था। उसके पास एक ही दंड था, जान से मारना, और छोटा मोटा दंड नहीं था, जान से मरवा डालता था। जबकि चोरी करने पर किसी के हाथ काटे जाते हैं या कुछ और दंड दिया जाता है, उसके पास एक ही दंड होता है, जान से मार दो। तो उससे जो है ना चोर लुटे तो सब भाग गए, छिप गए। और भागवत में बताया गया है कि उसके डर से चोर लुटेरे ऐसी इस प्रकार से छिपे जैसे सांप के सामने चूहे छिप जाते हैं, चूहे अपने बिल में घुस जाते हैं। सांप भी तो अच्छा नहीं होता, हालांकि चूहे बहुत खराब होते हैं, उपद्रव करते हैं, लेकिन चूहों का इलाज करने के लिए क्या आप सांप को पालोगे? सांप को नहीं पालोगे, सांप और भी बुरा है। तो वो सांप की तरह था बेन, हालांकि चोर लुटेरे तो जो है ना छिप करके जो है ना भाग गए, किसी प्रकार से कोई मतलब डर नहीं रहा चोरी का, लेकिन वो सर्प की तरह था, क्योंकि उसने क्या किया, ना होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम दुजा कुचित। उसने अपने पूरी पृथ्वी में, उसने पूरी पृथ्वी एक राजा के अधीन थी, तो पूरी पृथ्वी में उसने जो ना अपना शासन, नया शासन बनाया कि किसी प्रकार का हवन नहीं करना है, दान नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसका ये सिद्धांत था कि राजा के शरीर में ही सब देवता होते हैं, और विष्णु की भी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, देवताओं की पूजा करने की अलग से जरूरत नहीं है, राजा ही ना भगवान का रूप होता है। हालांकि गीता में भगवान ने कहा है नराणाम चा नराधिपम, राजा भी एक भगवान की विभूति है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि राजा भगवान से स्वतंत्र हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं है, भगवान की विभूति है, भगवान का एक रूप राजा भी होता है। तो उसने जो ना उसको दूसरी तरह से अर्थ निकाला, ऐसे कई लोग भगवद गीता का भी अर्थ निकालते हैं उल्टा सीधा है? तो उसने भी अर्थ यही निकाला कि भी राजा ही भगवान है और भगवान जो है ना राजा से अलग नहीं है। तो राजा के रूप में जो है ना जो जिसकी भी किसी देवता की पूजा करना चाहते हो या भगवान की पूजा करना चाहते हो तो राजा के रूप में पूजा करूँ। तो उस समय फिर बहुत ही दिक्कत हुई प्रजा को, हालांकि धन और सामान की तो सुरक्षा थी, लेकिन भगवान का जो जो पूजन था वो बिल्कुल बंद हो गया। और भगवान के पूजन के बंद होने से हुआ क्या, यज्ञ बंद हो गए। और गीता में भगवान ने क्या कहा है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। यज्ञ से जो नाम वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है और अन्न से सब प्राणी जीवित रहते हैं। तो चूंकि पूजा बंद हो गई, सब प्रकार की पूजा बंद करवा दी उसने, सोचो कितना मतलब दुष्ट था, और एक राजा का शासन पूरी पृथ्वी में था, तो सोचो कि कितनी बड़ी ये खराब स्थिति थी पूरी पृथ्वी में। अभी कुछ स्थानों पर नास्तिकों का शासन है, तो वो कुछ अपने कुछ क्षेत्र में तो धर्म के कार्य बंद कराते हैं, लेकिन बेन के अधीन तो पूरी पृथ्वी थी। उस समय सात समुद्र और सात द्वीप नहीं थे, सात समुद्र और सात द्वीप तो महाराज प्रियव्रत के समय में बने, उनके रथ के पहियों के जो है निशान से सात समुद्र बने, तो उस समय सात समुद्र और सात द्वीप नहीं थे, तो सोचो कि कितनी बड़ी पृथ्वी थी। और पूरी पृथ्वी में उसने जो है ना यज्ञ दान और जो है हवन सब बंद करा दिए। तो उससे क्या हुआ कि वर्षा बंद हो गई, हाँ, और पृथ्वी ने अन्न भी जो है ना उगाना बंद कर दिया है? तो उस समय क्या कि प्रजा जो है ना अब बहुत ही कष्ट पाने लगी। उस समय ऐसा नहीं था कि एक दिन में कोई मर जाए अगर भोजन ना मिले, आजकल तो ये होता है एक दिन में दो दिन में ही कोई मर सकता है भोजन ना मिले, लेकिन कई सालों तक भी लोग नहीं मरते थे, लेकिन तो भी पीड़ा पा रहे थे, कष्ट पा रहे थे भोजन के बिना, तो कई सालों तक ऐसा चलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने विचार किया कि इसको समझाया जाए, पहले तो समझाया जाए, लेकिन विचार करके आए थे, निश्चय करके आए थे कि वो समझने वाला नहीं है और इसको खत्म किया जाएगा। तो अच्छी तरह से मन में जो है ना क्रोध को दबा करके और उसके पास आए और ऊपर से प्रसन्न होकर के उसको समझाना शुरू किया, उसको समझाया कि तुम जो है राजर्षियों के जो है ना वंश में पैदा हुए हो, जिसमें महाराज मनु स्वयं मनु हैं, ध्रुव हैं, उत्तान पाद हैं, सब राजाओं के नाम गिनाए, तो अपने वंश को जो है तुम अपने वंश का यश बढ़ाओ और अपने वंश के जो राजा हैं उनके अनुसार ही कार्य करो और भगवान विष्णु की पूजा होने दो। वेद यही बताते हैं भगवान विष्णु की पूजा से ही सब लोग सुखी होते हैं। तो बहुत ही प्रिय ढंग से उसको समझाया, लेकिन वो इतना दुष्ट था कि वो उल्टा बोलने लगा। और क्या बोलने लगा कि तुम लोग जो है विष्णु की पूजा करना चाहते हो मुझे छोड़ करके, जितने भी देवता हैं सब राजा के शरीर में होते हैं, मुझे छोड़ करके तुम विष्णु की पूजा करना चाहते हो। उसी प्रकार से जैसे कोई वेश्या स्त्री अपने पति की सेवा को छोड़ करके दूसरे पुरुषों की सेवा करें। तो मैं तुम लोगों का पति हूँ, राजा पति होता है प्रजा का, तो तुम लोग राजा की पूजा छोड़ करके विष्णु की पूजा करना चाहते हो, तो बहुत अपराध, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो उससे क्या हुआ कि ऋषियों ने जो है ना फिर क्रोध का प्रयोग किया और उसको साफ सही उसी समय मार डाला कि ये जिंदा रहने लायक नहीं है, ये जितना जिंदा रहेगा उतना ही ज्यादा ये पाप करेगा। अघायुर इंद्रिया राम मोघम पार्थ जीवती, जिंदा जितना अधिक जिंदा रहेगा उतना अधिक ये पाप करेगा, इसको तुरंत ही मर जाना चाहिए। तो इसको मार डाला अपने शाप से और फिर चले गए, क्योंकि कोई राजा था नहीं योग्य राजा, और वो राजा के वंश में भी कोई नहीं था, तो फिर चले गए। तो फिर बड़ी समस्या हुई कि जो है ना फिर से चोर लुटेरों का आतंक बढ़ गया। और ये राजा बेन जो मर गया था, इसकी माता सुनीता थी, तो उसने जो है ना वो जानते थे ऋषि मुनियों की शक्ति कितनी होती है, तो राजा बेन के शरीर को तेल के पात्र में रख करके सुरक्षित रहा कि खराब ना हो, सड़े नहीं। आगे चल करके ये ऋषि मुनि लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर ऋषि मुनियों ने फिर विचार किया कि अब तो भगवान को ही आना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी की रक्षा जो है और कोई नहीं करने वाला। तो भगवान से प्रार्थना की और राजा बेन के शरीर का मंथन किया। तो बेन के शरीर के मंथन से पहले उसकी जंघा से एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। तो वो राजा बेन के शरीर का पाप था वो निकला, तो उसको तो आदेश दिया कि तुम जंगल में जाओ। और इसके बाद फिर भुजाओं का मंथन किया, तो दाहिनी भुजा से पृथु महाराज उत्पन्न हुए और बाईं भुजा से अर्ची महारानी उत्पन्न हुई। ये प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के शक्त्याभिष अवतार है। भगवान के शक्त्याभिष अवतार मतलब वैकुंठ लोक के निवासी, वैकुंठ लोक में जो निवासी हैं वो भी भगवान के समान ही उनका रूप होता है, चार भुजाओं का सारूप्य। तो ये जो है इस प्रकार से जो है इनका जन्म हुआ महाराज पृथु का। तो जब पृथु महाराज का जन्म होता है तो फिर जन्म के समय ही सब देवता लोग आते हैं और ब्रह्मा जी भी उनके हाथ पैरों के सब चिन्ह देखते हैं, भगवान विष्णु के ही पूरे चिन्ह हैं हाथ पैरों में, तो निश्चित करते हैं कि ये भगवान के शक्ति अवतार हैं। और फिर गंधर्व हैं किन्नर हैं सब जो ना उत्सव मनाते हैं, गान करते हैं बजाते हैं, और चारण हैं उनकी स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद फिर जो है इनका राज्याभिषेक होता है, बहुत उत्सव मनाया जाता है। और इनके समय में फिर प्रजा को पूरी सुख शांति प्राप्त हुई, मतलब चोर लुटेरों से भी भय दूर हो गया और खूब अवसर मिला भगवान की पूजा करने का। तो जब भगवान की पूजा करने का अवसर मिला तो खूब प्रचुर वर्षा हुई। लेकिन फिर समस्या पैदा हुई, समस्या पैदा हुई। हरि बोल। वर्षा होने के बावजूद भी समस्या पैदा हुई कि अन्न पैदा नहीं हुआ। एक विशेष ये घटना है कि पृथ्वी में वर्षा हो रही है लेकिन तो भी अन्न पैदा नहीं हो रहा है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी देवी ने जितने बीज थे अन्न के अपने पेट में सुरक्षित रख लिए थे, वो उगा नहीं रही थी, क्योंकि तो कोई भगवान की पूजा नहीं करता है। वास्तव में पृथ्वी देवी अन्न उगाती है या जो औषधियां उगाती है ये उनके लिए उगाती है जो भगवान की पूजा करते हैं, और जो अभक्त हैं असुर हैं उनको भी मिल रहा है अन्न, वो उनके कारण मिल रहा है, भक्तों के कारण। पृथ्वी देवी अन्न जो उगाती है वो भक्तों के लिए उगाती है। अब जो दूसरे जो अभक्त हैं वो भी लाभ उठाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन जब कोई भक्त नहीं था, कोई भक्ति नहीं कर रहा था, तो पृथ्वी देवी ने अन्न अपने पेट में छिपा लिया था, और बहुत समय से वो अन्न उसके पेट में पला पला पच गया। वो भी पृथ्वी देवी का ऐसा विचार नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। पृथ्वी देवी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। अब पेट में अन्न पच गया तो अब वो अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा पृथ्वी देवी के शरीर से, हालांकि वर्षा हो रही। तो फिर प्रजा फिर आई बहुत तंग होकर के कि यज्ञ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अन्न पैदा नहीं हो रहा है, अब तो हम मर जाएंगे, कि बहुत साल हो चुका है कि हमें भोजन नहीं मिला और अब अगर आप देर लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे प्राण ना बचें, अब आप जल्दी कुछ व्यवस्था करो भोजन की, अन्न की। तो फिर पृथु महाराज जो है विचार करते हैं कि क्या कारण है, यज्ञ हो रहे हैं है? और पृथ्वी को यज्ञ का भाग मिल रहा है तो भी अन्न पैदा नहीं कर रही है, वर्षा हो रही है तो भी पृथ्वी अन्न पैदा नहीं कर रही है, तो इसका कारण पृथ्वी, पृथ्वी ही इसका कारण है, पृथ्वी का ही ये दोष है। तो पृथ्वी को मार डालने के लिए उन्होंने अपने धनुष में बाण संधान किया। उस समय पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके भागती है और वे जो है ना छोड़ना नहीं चाहते। तब पृथ्वी उनसे प्रार्थना करती है कि आप तो पृथ्वी की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया और मैं आपके रक्षणीय हूं, आप मेरे रक्षक हैं, फिर आप ही मुझे मारेंगे तो कौन बचाएगा। पृथ्वी देवी कहती मैं स्त्री भी हूं, मैं अबला हूं, मैं आपके शरणागत हूं, फिर गाय के रूप में हूं। इतने सब कारण बताए पृथ्वी देवी ने कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। पृथ्वी महाराज नहीं माने, बोले नहीं मारूंगा तुमको, संपूर्ण धर्म कर्ता तो जानते हैं पृथ्वी महाराज, गाय के रूप में भी है, स्त्री भी है, शरण भी ले रही है, प्रार्थना कर रही है रक्षा करो रक्षा करो, तो भी वो मारना चाहते हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि प्रजा बचने वाली नहीं है, अगर देर लगेगी और पृथ्वी से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है तो पृथ्वी महाराज कहते हैं तुझको मार करके मैं तेरे मेदे से प्रजा का पेट भरूंगा, और कोई उपाय नहीं है कि और जल्दी हो सके कुछ काम। तो पृथ्वी देवी कहती है कि अगर आप उसे मार डालोगे तो फिर प्रजा को कहां रखोगे है? अगर आप मुझे मार डालोगे तो फिर समुद्र में कैसे रहे प्रजा रहेगी। तो पृथु महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से पूरी प्रजा को धारण करूंगा लेकिन तुझको मैं खत्म करूंगा, और कोई उपाय नहीं था पृथु महाराज के सामने। तब पृथ्वी देवी ने जो है उनसे एक उपाय कहा कि मेरी प्रार्थना है आप सुन लो, एक ऐसा भी उपाय है जिससे मुझे भी ना मारा जाए और प्रजा का भी पेट भर जाए। तो उसने कहा कि चूंकि अब अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता है हरे कृष्ण, चूंकि अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता है हा? तो अब जो है चूंकि वो अन्न मेरे शरीर में पच चुका है तो दूध के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो, अब जो अन्न है वो दूध के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है तो मैं गाय के रूप में हूं, आप एक उचित जो पात्र है वो आप तैयार करो और एक उचित बछड़ा तैयार करो जिससे कि मैं दूध के रूप में अन्न दे सकूं। तो फिर स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके और अपने हाथ के पात्र में ही पृथ्वी महाराज ने जितने भी अन्न औषधियां हैं उनका दोहन किया। तो इसमें लिखा है दुग्ध माम औषधीर विप्लास, जितने औषधियां हैं, औषधियां मतलब अन्न औषधि सब उन्होंने दोहन किया पृथ्वी से। सोचो एक समय ऐसा भी था कि ऐसी भी घटना घटी, लोग तो सोचते हैं कि पृथ्वी कोई देवी नहीं है तो निर्जीव है, लेकिन नहीं, पृथ्वी देवी एक शरीर है और शरीर में जो है अगर अन्न पच जाए किसी प्रकार से तो फिर वो उग नहीं सकता। जितने भी बीज हैं हर प्रकार के बीज उन्होंने पृथ्वी से, सोचो एक समय ऐसा भी था कि ऐसी भी घटना घटी, लोग तो सोचते हैं कि पृथ्वी कोई देवी नहीं है तो निर्जीव है, लेकिन नहीं, पृथ्वी देवी एक शरीर है और शरीर में जो है अगर अन्न पच जाए किसी प्रकार से तो फिर वो उग नहीं सकता। जितने भी बीज हैं हर प्रकार के बीज उन्होंने दूध के रूप में दोहन किए, उसके बाद फिर जो है ना फिर बोए गए तब फिर अन्न पैदा होने लगा। उस समय पृथ्वी देवी ने फिर एक प्रार्थना की, खैर उस समय क्या था कि बड़ा अच्छा मौका था इसलिए देवताओं ने भी अपने अपने अभीष दोहन कर लिए पृथ्वी देवी से, जितने भी उनको आवश्यकताएं थी इच्छा थी वो हर इच्छित वस्तु पृथ्वी से दूध के रूप में प्राप्त कर लिया, गंधर्वों ने और जो है सिद्धों ने चारणों ने सब ने ऋषि मुनियों ने अपने अपनी इच्छा इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली। वो एक ऐसा मौका मिला उनको कि पृथ्वी देवी उस समय मतलब प्रसन्न थी। तो फिर पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की पृथ्वी महाराज से कि अब जो है अन्न उगाने में मुझे सहायता देने के लिए आप एक काम करो, क्योंकि पृथ्वी देवी उस समय क्या थी बहुत ऊंची नीची थी
और पृथ्वी में कोई नगर गांव नहीं बसे थे, नगर गांव बसाए भी नहीं जा सकते अगर ऊंची नीची हो। जैसे कि ये जमीन जहां ये मंदिर बना हुआ है इसको समतल किया गया और समतल करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, आप जानते कितने विस्फोट किए गए समतल करने के लिए 3 एकड़ की जमीन को, है ना। तो ऐसी जमीन में कहाँ रह सकते थे, कैसे मकान बने और कैसे जो ना शहर बने, अगर पूरी की पूरी पृथ्वी इसी प्रकार की थी सोचो तो कैसे बस्तियां बसती, कैसे गांव बनते, कैसे शहर बनते, कैसे सड़कें बनती अगर समतल नहीं होती। तो ये जो पूरी पृथ्वी है ये जो समतल हुई है तो पृथ्वी महाराज के कारण हुई। पृथ्वी देवी की समस्या थी कि आगे से मैं अन्न उत्पन्न करूंगी, उस समय बिना जोते बोए अन्न पैदा होता था, जोते जोतने और बोने की जरूरत नहीं थी, बिना जोते बोए अन्न पैदा होता था। लेकिन पृथ्वी देवी की समस्या थी कि पानी ठहरता नहीं है, पृथ्वी में पानी नहीं ठहरता है, तो समतल करो मुझे। तो पृथ्वी महाराज ने समतल किया पृथ्वी को, कैसे, अपने धनुष की नोक से ठोक ठोक करके पृथ्वी को समतल किया। क्या इनकी शक्ति, पृथ्वी महाराज का कैसा पराक्रम है, अपने धनुष की नोक से ठोक ठोक करके पृथ्वी को समतल कर दिया। अब आज जो पृथ्वी दिखाई पड़ रही है इतनी समतल है, सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े शहर बने हैं, ये पृथ्वी महाराज के कारण है। और ये पृथ्वी नाम भी जो पड़ा है वो पृथ्वी के कारण पड़ा है, इस बात को कौन जानता है, पृथ्वी महाराज के कारण ही ये पृथ्वी नाम पड़ा, नहीं तो इसका नाम था मेदिनी। मेदिनी नाम क्यों था, तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अशांति छाई थी उनके पापी पिता के कुशासन के कारण, मतलब बेन के समान आज तक कोई पापी राजा नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र राजा था पृथ्वी का, है ना। तो सोचो कि कितना बड़ा वो उसका पाप था कि पूरी पृथ्वी में ही उसने यज्ञ और हवन और दान बंद करा दिया। आगे बुद्धिमान व्यक्तियों यानी मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से ना केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। मतलब ये नहीं है कि भाई कोमल ही होना चाहिए, जो भक्त हैं वो कोमल ही होते हैं, नहीं, कठोर भी होते हैं और वज्र के से भी ज्यादा कठोर होते हैं जब आवश्यकता पड़े, कमल से भी कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर, है ना। तो ब्राह्मणों ने फिर जो ना इस पर दया नहीं की क्योंकि ये दया के लायक नहीं था, इसलिए इसको शासन से उतार दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण की देखभाल करे। सर्वांगीण कल्याण, सब प्रकार का कल्याण करे राजा, मतलब यानी कि एक प्रकार का तो कल्याण करे और दूसरे प्रकार से नुकसान करे। जो बेन था एक प्रकार से तो कल्याण कर रहा था प्रजा का कि भाई चोर डाकुओं से तो रक्षा कर दी उसने, लेकिन दूसरे प्रकार से वो बहुत नुकसान कर रहा था क्योंकि भगवान की पूजा बंद कराई उसने। तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण की देखभाल करे। जब भी राजा अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे। ये ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण स्वयं राजा नहीं होते हैं, उनका ये कार्य होता है कि उसे सिंहासन से उतार दिया जाए। एक तरफा नहीं कि एक तरफा तो अच्छा काम कर रहे और दूसरी तरफा जो है ना नुकसान कर रहे, राज सिंहासन से उतार दे। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठते क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। ये ब्राह्मण लोग खुद राजा नहीं बनते हैं, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, समाज का सिर होता है, सिर का काम दूसरा है और भुजा का काम दूसरा है, भुजा रक्षा करती है सिर की भी और पूरे शरीर की। जो राजा है वो पूरे समाज की रक्षा करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है। ब्राह्मण लोग जो है राजा का काम नहीं करते हैं क्योंकि जो सिर है ये भुजाओं का काम नहीं करता, लेकिन फिर भी सिर भुजाओं के ऊपर होता है और सिर भुजाओं को आदेश देता है, सिर ही भुजाओं को आदेश देता है कि ये काम करो ये काम ना करो, और सिर के आदेश से ही भुजा सब काम करती है। तो ब्राह्मणों के आदेश से ही राजा सब काम करता है, लेकिन ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनते। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठते क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के अधिक महत्व, भुजाओं को आदेश देता है कि ये काम करो ये काम ना करो, और सिर के आदेश से ही भुजा सब काम करती है। तो ब्राह्मणों के आदेश से ही राजा सब काम करता है, लेकिन ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनते। तो यहां पर ऊपर लिख रहे हैं कि किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। सिर का कार्य है देखना है, सुनना है, बोलना है ना, तो ये सब समझना, जनता का कैसे कल्याण होगा। ब्राह्मण लोग स्वयं तपस्या में लगे रहते हैं, स्वाध्याय अध्ययन में लगे रहते हैं, उपदेश का कार्य करते हैं, वे राजा का काम नहीं करते। ये राजा फिर भी चुनते वो हैं, तो ब्राह्मण लोग राजा चुनते थे, अभी आजकल शूद्र लोग राजा चुनते हैं, शूद्रों को ही राजा बना रहे हैं, ये प्रजातंत्र है कि नहीं। पहले जो है ब्राह्मण लोग जो है ना राजा का चुनाव करते थे, और ब्राह्मण लोग जो है राजा को उतारते थे सिंहासन से, है ना। आगे अतः राज सिंहासन पर ना बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और वे महाराज पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए। जब देखा कोई योग्य नहीं है राजा बनने के लिए, तो भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने भेजा पृथ्वी महाराज को एक शक्त्याभिष अवतार। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की स्पृहा नहीं करते। जो वास्तव में जो बुद्धिमान है ब्राह्मण है वो राजनीतिक पद की स्पृहा नहीं करते। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, मैं प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहूंगा, है ना, मैं प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहूंगा। तो यही प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की स्पृहा नहीं करते। महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले, ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। मतलब पृथ्वी महाराज को आदि राजा कहा जाता है, राजाओं में सबसे पहले राजा पृथ्वी हुए, क्योंकि वो असली राजा थे, सबसे पहले राजा वो थे, क्योंकि पृथ्वी को उन्होंने बनाया, प्रजा के रहने लायक स्थान बनाया। अभी पृथ्वी महाराज की ही कृपा है जो कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं। तो सोचो जैसी यहां जमीन थी ऐसी जमीन अगर पूरी पृथ्वी में होती तो कैसे शहर बनते, कैसे गांव बनते, कैसे गाड़ियां चलती, कैसे चलते, कैसे कारें चलती। ये पृथ्वी महाराज की कृपा है जो कि किया उन्होंने, इसलिए वो आदि राजा। राजा का मतलब है रंजयति इति राजा, जो प्रजा को रंजन करे, प्रजा का आनंद, जो प्रजा को आनंदित करे वो राजा है। उन्होंने वास्तव में प्रजा को आनंद दिया, इसलिए आदि राजा पृथ्वी। तो यहां पर जो है प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब यहां पर एक तो शब्द है अंत में, आप देख रहे हैं स औसत्तमः, औसत्तमः का मतलब है अत्यंत आकर्षक। तो इसमें लिखा है कि दुग्धे माम औषधीर विप्रास तेनायम स औसत्तमः, उन्होंने जो है दूध के रूप में पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया, इस कारण से ये सबसे ज्यादा आकर्षक हैं औसत्तम। जितने भी अवतार हैं उनमें ये सबसे ज्यादा आकर्षक हैं पृथ्वी महाराज, इस कारण से। प्रत्येक अवतार की कोई ना कोई विशेषता है, और पृथ्वी महाराज के अवतार की जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने जो ना पृथ्वी को एक आकर्षक रूप दिया। अब यहां प्रभुपाद जी औषत्तम शब्द ये लगा रहे हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी देवी आकर्षक हो गई, पृथ्वी देवी सुंदर बन गई। तेनायम स औषत्तम, तो इसका मतलब है कि इनके कारण, तेन का मतलब इनके कारण, पृथ्वी महाराज के कारण सा औषत्तमा, सा अगर बड़ा आ की मात्रा लगा दी जाए सामने तो सा माने पृथ्वी, औषत्तम माने आकर्षक हो गई, उनके कारण ही पृथ्वी बहुत आकर्षक हो गई, है ना, सुंदर हो गई, सुंदर रूप हो गया। अब पानी ठहरता है पृथ्वी में, है पृथ्वी में नदियां बहती हैं और सरोवर भी बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, इस कारण से औषत्तम। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है, अगर सा जो जैसा है सहा, तो सहा मतलब ये पृथ्वी महाराज के लिए भी आता है, तेनायम सह औसत्तम मतलब ये पृथ्वी महाराज बहुत आकर्षक हैं, इस कारण से पृथ्वी को एक नया रूप प्रदान किया, इस कारण से पृथ्वी महाराज औसत्तम। श्रीधर स्वामी इंटीका में यही लिख रहे हैं कमनीयतम सबसे ज्यादा कमनी है, जिनकी कामना की जाए, जिनकी आवश्यकता हो, पर तुम्हारा सबसे ज्यादा आवश्यक अवतार है तेनायम सब सप्तम। श्रीमद् भागवत में प्रथु महाराज का जो चरित्र है बहुत विस्तार में है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय 14 से लेकर के अध्याय 23 तक, नहीं 15 से, हाँ अध्याय 15 से लेकर 23 तक, 9 अध्याय ये प्रथु महाराज के चरित्र के हैं। मतलब बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत में प्रथु महाराज का चरित्र का वर्णन है। मतलब भगवान कृष्ण के चरित्र के बाद अगर ज्यादा चरित्र का वर्णन अगर हुआ है किसी अवतार का तो वो पृथु महाराज का है। भगवान राम के भी चरित्र का वर्णन इतना नहीं है, 2 या 3 अध्याय में राम के चरित्र का वर्णन है। और इसका कारण ये है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से तो या सीतापति हो कि आपने सीतापति का चरित्र बार बार सुना है। भगवान राम का चरित्र तो आपने बार बार सुना है, पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है भगवान राम का चरित्र है। और ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषिभिर इसी प्रकार से कि बड़े बड़े ऋषियों ने राम के चरित्र का वर्णन किया है। तो इसी राम का चरित्र तो संक्षेप में वर्णन किया है, लेकिन पृथु महाराज का जो चरित्र है ये सबसे ज्यादा 9 अध्यायों में है ना। हालांकि नरसिंह भगवान का भी जो ना जो अवतार है उसका काफी वर्णन है भागवत में, लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा से ज्यादा तो प्रहलाद महाराज का चरित्र है और हिरण्यकश्यप का चरित्र है। नरसिंह भगवान के जो ना विषय में 1 अध्याय या 2 अध्याय में ही केवल वर्णन है कि कैसे उन्होंने मारा हिरण्यकश्यप को, लेकिन पृथु महाराज का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पृथु महाराज हैं जिन्होंने कि ये सब कार्य किए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है हम प्रश्नोत्तर ज्यादा चाहेंगे करना, तो किसी का प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न हाँ, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ एक चीज और मुझे याद आ गई, पार्थिवम वपुः, इस श्लोक में जो है पार्थिवम वपुः जो लिखा हुआ है इसके भी 2 अर्थ हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पार्थिवम वपुः का मतलब पृथु का शरीर उन्होंने स्वीकार किया पार्थिवम, और श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं पार्थिवम पार्थिव माने राजा। नहीं अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं, प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, प्रश्न बताऊंगा, अभी इस शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं। पार्थिव पार्थिव का मतलब राजा भी होता है, तो भेजे पार्थिवम अपू का मतलब है उन्होंने राजा का शरीर स्वीकार किया, ऋषियों की याचना से प्रार्थना से इन्होंने एक राजा का शरीर स्वीकार किया। और पार्थिवम बपु का मतलब पृथु, पृथु का शरीर, तो पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित, पृथु से संबंधित, या पार्थिव का मतलब राजा भी है। तो पार्थिवम बपु का मतलब राजा का शरीर या पृथु महाराज का शरीर स्वीकार किया। अच्छा अब इनका एक प्रश्न है कि पृथु महाराज ने कुछ यज्ञ किए थे जिसमें भगवान विष्णु स्वयं आए थे, प्रकट हुए थे, बहुत सुंदर चरित्र है पृथु महाराज का। इन्होंने जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन उस समय जो इंद्र थे तो उनको ईर्ष्या हो गई, क्या, क्योंकि इंद्र का पद उस व्यक्ति को मिलता है जो 100 यज्ञ कर चुका है, जिसे 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों उसको इंद्र का पद मिलता है, या वो विशेष उस समय के जो इंद्र थे उन्होंने 100 यज्ञ करके इंद्र का पद प्राप्त किया था, इसलिए इंद्र को नाम मिला शतक्रतु, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, जिसे 100 यज्ञ किए, तो शतक्रतु इंद्र को नाम मिला। तो इंद्र नहीं चाहते कि किसी दूसरे व्यक्ति के भी 100 यज्ञ पूरे हों, हालांकि पृथु महाराज को इंद्र का पद नहीं चाहिए था, और इंद्र को पता था कि इनको इंद्र का पद नहीं चाहिए, लेकिन तो अभी वो 100वें यज्ञ में बाधा डाल रहा था कि 100वां यज्ञ पूरा ना हो, क्यों, क्योंकि उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इंद्र की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इंद्र में जो है ना कि ईर्ष्या थी, इसलिए क्या कर रहा था इंद्र, इनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो 100वां यज्ञ हो रहा था तो बार बार चुराता था, तो कई प्रकार के वेशभूषा बनाता था, कभी कापालिक बन करके, मतलब जो शव का मुंड होता है ना उसको धारण करके आता है, है ना, कभी गेरुआ कपड़े पहन करके आता है, है ना, कई प्रकार के। अभी आजकल जो है ना, जो वेशभूषाएं चली है ना पाखंडियों की, कई प्रकार की, कभी बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके, कभी मुंडित सिर करके, है ना, और मुंडों की माला पहन करके आता है, है? और कई प्रकार के जो ना वेशभूषा धारण करके वो आता और घोड़े को चुराता। पृथु महाराज तो उस समय युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो यज्ञ में दीक्षित थे, तो उनका जो पुत्र था विजिताश्व, तो वो घोड़े की रक्षा में था। लेकिन जब इंद्र आता ऐसे साधु का रूप धारण करके, तो वो कुछ बोलता नहीं, है? क्योंकि वो राजकुमार, वो सोचता भाई ये भी कोई ब्राह्मण है और कुछ यज्ञ का ही कार्य कर रहा है, तो घोड़ा को ले रहा है, तो कैसे बोले, कुछ क्या बोले। अत्रि मुनि जो है उनके पुरोहित थे, तो वो कहते हैं कि इसको मारो, ये इंद्र है, है? ये पाखंडी है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो विजेतासु जो है जब मारने के लिए तैयार होता, तो वो अंतर्धान होकर के और वो घोड़े को छोड़ के चला जाता। ऐसे कई बार किया उसने, कभी ये रूप धारण करे, कभी वो रूप धारण करे। तो विजेतासु सोचता कि भाई ये कोई और ब्राह्मण होगा जो यज्ञ का काम कर रहा है और घोड़े को चुरा के ले जा रहा है। और अत्रि मुनि हर बार बोलते हैं इसको मारो, ये इंद्र है, ये नहीं है, ये साधु नहीं है। तो उस समय फिर क्या हुआ कि पृथु महाराज जो है ना फिर गुस्से में आते हैं और वो विचार करते हैं कि मैं इसको खत्म कर देता हूं इंद्र को अभी। लेकिन फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आप यज्ञ में दीक्षित हैं, लेकिन आप आदेश दो तो इंद्र को हम हवन कुंड में ही गिरा देंगे, मंत्र के द्वारा अग्नि के हवन कुंड में ही हम इंद्र को गिरा देंगे। तो पृथु महाराज के आदेश से ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तब फिर इंद्र के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी स्वयं आए पृथु महाराज को शांत करने के लिए और समझाया कि आपके लिए कुछ जरूरत नहीं है कि 100 यज्ञ आप पूरे करो, आपको जो है ना इंद्र का पद तो चाहिए नहीं, है ना, और इंद्र भी एक जो है ना पूजनीय देवता है, अगर वो बाधा डाल रहा है तो अच्छा है कि आप यज्ञ ही बंद कर दो, आप छोड़ दो, आप अपनी प्रतिज्ञा को आप तोड़ करके और जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करो। तो उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया, तो 100वां यज्ञ उन्होंने छोड़ दिया, जबकि पृथ्वी महाराज के पास पूरी शक्ति थी। तो ये बहुत बड़ा त्याग माना गया पृथ्वी महाराज का, ये बहुत बड़ा त्याग था कि उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिया, जबकि ऐसे में तो क्षत्रिय के अंदर और ज्यादा वो हो जाता है, है ना, निश्चय कर लेता है कि नहीं मैं पूरा करूंगा। उनके पास पूरी करने की शक्ति थी, इंद्र को मार डालने की भी शक्ति थी, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया और 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा। एक बड़ी जो है ना दुख की बात होती है, विशेष रूप से 100 यज्ञ जो है ना मतलब पूरे करने हो और 100वां यज्ञ ही मतलब पूरा ना हो, 99 का चक्कर बड़ा बुरा होता है, जानते हो, 99 का चक्कर बड़ा बुरा होता है, है ना। तो 100 की संख्या पूरी करने के लिए व्यक्ति जो है ना फिर अपनी जान लगा देता है किसी प्रकार से 100 पूरे हो जाए, लेकिन पृथु महाराज ने इस 100 के 99 के चक्कर में नहीं पड़े, वो उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से या आदेश से 100वां यज्ञ पूरा नहीं किया, और ये उनका बहुत बड़ा त्याग माना गया, बहुत बड़ा त्याग था। और इंद्र को क्षमा कर दिया, इंद्र को दंड नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय इंद्र जो है ना यज्ञ में बाधा डालने के लिए कई प्रकार के पाखंडी वेश धारण कर रहा है और इस प्रकार से पृथ्वी में पाखंड फैल रहा है। इंद्र की नकल करने के लिए और भी पाखंडी लोग हैं, वो चोरी करते हैं तो इसी रूप में आते हैं, कई प्रकार के साधु वेश धारण करते हैं। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंठित केश कासायां वर बहुकृत वेश पश्यन्न पितन पश्यति मूढ़ो हृदर निमित्तिम बहुकृत वेश। पेट भरने के लिए कई प्रकार के वेश धारण करते हैं जटिलो, कोई जटाएं धारण करता है, कोई मुंडी सिर मुड़ा लेता है, जटिलो मुंडी लुंठित केश और घुंघराले बाल जूड़ा बनाते हैं सिर में, कासायां वर बहुकृत वेश। तो पेट भरने के लिए कई प्रकार के जो है ना वेशभूषा बनाते हैं लोग, है ना। तो ये जो है ना रोको, ब्रह्मा जी ने कहा इसको रोको, इंद्र को इस कार्य को रोको, इंद्र को क्षमा करो, क्योंकि इंद्र का पद है अभी उसको मिला हुआ है, तो वो पूजनीय है वो। तो फिर भगवान स्वयं जो है ना उनके यज्ञ में दर्शन देते हैं। सोचिए किसी के यज्ञ में भगवान ने दर्शन किया कि अच्छी विधि से यज्ञ पूरा किया तो भगवान ने दर्शन किया, लेकिन पृथु महाराज ने यज्ञ पूरा नहीं किया तो भगवान ने दर्शन दिया, उनका इतना बड़ा त्याग था कि उन्होंने यज्ञ पूरा नहीं किया। तो पृथु महाराज के इस त्याग से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात है ना गरुड़ पर बैठ करके वो आए और गरुड़ से नीचे उतर करके अपने पैर पृथ्वी पर रखे। भगवान ने अपने चरण कमलों को पृथ्वी के ऊपर रखा, ये बहुत बड़ी घटना थी कि साक्षात भगवान आए। उनका एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर था और दोनों पैर पृथ्वी पर रखे हुए थे भगवान ने, और प्रथु महाराज से बातचीत करते रहे और बहुत देर तक बातचीत करते रहे, उनकी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। इतना प्रथु महाराज का जो है आकर्षण था कि भगवान के जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी इच्छा ना होते हुए भी भगवान गए। फिर प्रथु महाराज का जो है ना ऐसा चरित्र था कि भगवान स्वयं जो है ना उनके ना प्रति आकर्षित होकर के आए, इस पृथ्वी पर खड़े हुए। और बड़ी सुंदर जो है ना चर्चा है, भगवान पृथ्वी महाराज से क्या बोलते हैं, फिर पृथ्वी महाराज भगवान से क्या बोलते हैं। पृथ्वी महाराज भगवान से कहते हैं कि मुझे आप 10,000 कान दीजिए जिससे कि मैं आपके गुणों को सुन सकूं। पृथ्वी महाराज को भगवान कहते हैं कि वर मांगो, तो वो कहते हैं मैं क्या वर मांगू, क्योंकि कोई भी वरदान ऐसा नहीं है जो काल के प्रभाव से नष्ट ना होने वाला सिवा आपके गुणगान के, इसलिए मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपके गुणगान को श्रवण कर सकूं। प्रथु महाराज मांगते हैं भगवान से, तो बड़ा सुंदर जो है ना इनका चरित्र है। और अंतिम जो 10 श्लोक हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगा। इनकी कथा को पढ़ने से और सुनने से सुनाने से क्या लाभ होता है, इसमें जो है विषय में, इस विषय में 10 श्लोक हैं। विशेष रूप से इनकी कथा को सुनने का जो है ना या सुनाने का या पढ़ने का क्या प्रभाव है। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुसा भगवत तमः कीर्तितं तस्य चरितं उद्दाम चरितस्यते। मैत्रेय ने कहा भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था, मैंने यथाशक्ति तुमसे उसका वर्णन किया है। यदम सुमहत् पुण्यम श्रद्धया वहिता पठेत सावये शृणुयान्वापि स पृथो पदवीं या। जो पुरुष श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगति पति वैश्या पठन विपति छूद्रा सत्यम सत्यमतामिया। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है, और यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है, यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा पशुओं का स्वामी हो जाता है, और यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। त्रिकृत्तो इदमाकर्ण्य नरो नारी अथवा अद्रता अप्रजहा सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, त्रिकृत्व 3 बार सुने, तो यदि वह निसंतान है तो संतान की प्राप्ति होगी, निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। अस्पष्ट कीर्ति ही सुयसा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्तेनं पुंसाम अमंगल्य निवारणम्। जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाता है, और यदि मूर्ख है तो परम विद्वान बन जाता है। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह दुर्भाग्य को दूर भगाता है। धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभीप सुभीम श्रद्धे तन अनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन जाता है, अपने जीवन अवधि बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कलमसों को नाश कर सकता है, साथ ही वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं ये पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुने। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वे तन अभियातियान बलिम तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथ्वी यथा। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार श्रवण करता है तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। मुक्तान्य संगो भगवन त्यमलाम भक्ति मुद्वहन व्यन्यस्य चरितम पुण्यम सुनया छावे पठे। शुद्ध भक्त भक्तियों की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना सुनाना तथा पढ़ना चाहिए। 3 चीजें श्रोणयात श्रावयत पठे, सुनना चाहिए सुनाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वैचित्र वीर्याभिहितम महन महात्म सूचकम अस्मिन् कृतमतिमर्त्यम पार्थिवीं गतिमाप्नुया। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया। जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज पृथु के समान भगवान के धाम को जाता है। अनुदिन मिद मादरे अनश्रणमन पृथु चरितम पृथयन विमुक्त संग भगवती भव सिंधु पोते पादे सत्य प्रणाम लभते रति मनुष्य। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसकी अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो ये अंतिम 10 श्लोक थे पृथु महाराज के चरित्र के। और कोई प्रश्न है किसी का? आपका प्रश्न। आप लोगों से प्रार्थना है कुछ समय और आप ठहरें, क्योंकि कुछ और भी प्रश्नोत्तर हम लोग कर सकते हैं। तो उनका प्रश्न है कि पृथु महाराज के पहले जो पृथ्वी थी तो वो कैसे बनी मधु कैटभ के संहार के द्वारा। महाभारत में वर्णन है कि भगवान, इनका प्रश्न है कि मधु कैटभ को मार करके भगवान ने जो है ये पृथ्वी कैसे बनाई, क्योंकि पृथ्वी का नाम था मेदिनी, उनके मेदे से बनी। मेदा समझते क्या है? हैट नहीं, हैट या बसा बोलते हैं, चर्बी। उनके शरीर की चर्बी से ही पृथ्वी बनी है। आप सुन रहे हैं, मधु और कैटभ ये दो असुर थे जो कि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे भगवान के नाभि कमल से, उसी समय इनका जन्म हुआ था भगवान के शरीर से, जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ वैसे ही। लेकिन कहां से पैदा हुए? दो कानों से पैदा हुए, कान के मैल से। क्योंकि मैल से पैदा हुए इसलिए असुर थे। आप समझ रहे हैं, भगवान के दोनों कानों के मैल से ये चूंकि पैदा हुए इसलिए असुर थे। लेकिन बहुत शक्तिशाली असुर थे ये। और समय और कोई नहीं था, ये 3 लोग थे भगवान के सिवा, और केवल 3 लोग थे। ब्रह्मा जी थे कमल के आसन पर बैठे हुए, और ये 2 असुर थे जो कि पानी में पैदा हुए। ये नीचे थे पानी में, और ये ब्रह्मा जी कमल के ऊपर थे, पानी के ऊपर थे। नहीं, जब देखा इन दोनों ने और ब्रह्मा जी दिखाई पड़े तो तंग करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए, है ना। तो उस समय ब्रह्मा जी जो है कमल को हिलाते हैं, नाल को हिलाते हैं भगवान को जगाने के लिए। क्या करें, कमल में छिप जाते हैं ब्रह्मा जी, और कमल को हिलाते हैं, नाल को हिलाते हैं भगवान को जगाने के लिए। जब भगवान की निद्रा टूटी तो भगवान ने इन दोनों को देखा, इन दोनों ने भगवान को देखा। तो भगवान कहते हैं इन दोनों से कि तुम दोनों मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो असुर हैं, असुरों में बहुत घमंड रहता है, तो कहते हैं हम क्या वरदान मांगे, तुम मांगो हमसे वरदान। तुम मांगो हमसे वरदान। तो भगवान जब वरदान मांगते, असुरों से कभी दोस्ती नहीं करते भगवान, है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं वरदान मांगता हूं तुमसे, मुझको वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। ये भगवान जो है असुरों से कभी दोस्ती नहीं करते हैं, चाहे वो वरदान मांग लें चाहे भगवान उनसे वरदान मांगे, भगवान को मारना ही है उनको। तो भगवान ने कहा तुम दोनों मुझे वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। तो कहते तो बहुत कठिन वरदान मांगा तुमने, अच्छा अब हम भी वरदान मांगेंगे। अब कहते हम भी वरदान मांगेंगे, है ना। तो भगवान कहते ठीक है मांगो वरदान, क्या मांगते हो वरदान मांगो। तो कहते हमें वरदान दो कि ऐसे स्थान पर मारो जहां पानी ना हो। तो जानते हो पानी पानी था और कहीं और कुछ था ही, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पानी ना हो, है ना। तो वो सोच करके मांगा, बहुत दिमाग लगा के कि अब मारेंगे कैसे मारेंगे, ऐसी जगह मारो जहां पानी ना हो। ठीक है, भगवान की कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सब उपाय होते हैं, चाहे जितने भी वरदान मांग लो, उनको मारना है तो मारेंगे ही। तो युद्ध हुआ, युद्ध करते करते जो है उन दोनों के सिरों को अपनी जंघा में रख करके भगवान ने चक्र से सिर काट डाले, पानी के ऊपर अपनी जंघा फैला ली और दोनों को मार डाला। पानी था ही नहीं, भगवान पानी के ऊपर उनको मार डालते हैं। फिर उनके शरीर के मेदे से ही ये पृथ्वी बनी है, जिस कारण से इसका नाम मेदिनी। तो पृथ्वी नाम जो है ना उस समय तक नहीं पड़ा जब तक पृथ्वी महाराज का अवतार नहीं हुआ, पृथ्वी के कारण ये पृथ्वी नाम पड़ा है। इस कारण से सोचो कि कोई सोचता नहीं पृथ्वी महाराज का अवतार कितना महत्वपूर्ण है, पृथ्वी महाराज की पुत्री। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौण लता इसी तरह लक्ष्मण हनुमान की जय।